지구를 찾아봤나 이마다 같았나
Let's go. Shri Krishna, Vandana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amen. वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाला उत्तम फल तथा फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही ना रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं मिल सकते।
Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This sloka explains that in relation to the material body, even the factual truth cannot exist without the touch of untruth. The Mayavadis say, Brahman Satyam Jagan Mitya. The spirit soul is truth, and the external energy is untruth. The Vaishnava philosophers, however, do not agree with the Mayavada philosophy. Even if, for the sake of argument, the material world is accepted as untruth, the living entity entangled in the illusory energy cannot come out of it without the help of the body. Without the help of the body, one cannot follow a system of religion, nor can one speculate on philosophical perfection. Therefore, the flower and fruit, pushpapalam, have to be obtained as a result of the body. Without the help of the body, that fruit cannot be gained. The Vaishnava philosophy, therefore, recommends yukta vairagya. It is not that all attention should be diverted for the maintenance of the body, but at the same time, one's bodily maintenance should not be neglected. As long as a body exists, one can thoroughly study the Veda, the Vedic instructions, and thus at the end of life, one can achieve perfection. This is explained in Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaram bhavam chichati anti kalevaram. Everything is examined at the time of death. Therefore, although the body is temporary, not eternal, one can take from it the best service and make one's life perfect.
तात्पर्य यह श्लोक बताता है कि इस शरीर में रंच मात्र असत्य के बिना असली सत्य भी नहीं रह सकता। मायावादियों को कहना है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आत्मा सत्य है और माया असत्य है, किंतु वैष्णव दार्शिकों को मायावादी दर्शन मान्य नहीं है। यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या मान भी लिया जाए तो माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना इससे बाहर निकल भी नहीं सकता। शरीर की सहायता के बिना कोई ना तो धर्म का पालन कर सकता है, ना कोई दार्शनिक पूर्णता का चिंतन कर सकता है। अतः फल तथा फूल पुष्प फलम को शरीर के परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना वह फल प्राप्त भी नहीं हो सकता। इसीलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग्य की संस्तुति करता है। ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान शरीर पर ही दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी ना की जाए। जब तक शरीर रहता है, मनुष्य वैदिक आदर्शों का अध्ययन करके जीवन के अंत समय सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में 8:6 में हुई है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते क्लेवरम। मृत्यु के समय हर बात की परीक्षा होती है, इसलिए यद्यपि यह शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, मनुष्य इससे अच्छी से अच्छी सेवा ले सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सचैवं सर्वैतं सर्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखानितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वञ्चकौपाकरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we're hearing Sukracharya, the guru of the demons, speak to Bali Maharaj, and he wants to encourage Bali Maharaj to break his promise not to give charity.
तो हम शुक्राचार्य को सुन रहे हैं। शुक्राचार्य हसरों के गुरु हैं और वो बलि महाराज से उनको उत्साहित कर रहे हैं कि उन्होंने जो वामन देव जी को वचन दिया है उस वचन का पालन ना करके उसको तोड़े।
And just a few days ago we were giving class in Vrindavan. It was Haranyakashipu speaking. So we see these demons from time to time speak philosophy.
कह रहे हैं कुछ समय पहले मैंने वृंदावन में क्लास दिया था, तो उस क्लास में हिरण्यकश्यप बोल रहा था, तो हम देख सकते हैं कि ये जो असुर है ये भी कभी कभी सिद्धांत बोलते हैं।
So it's mentioned like that in Bhagavad Gita, and Lord Krishna describes there are two natures, Daivi Sampad, Asuric Sampad. There are the devotee, the qualities of a devotee, or the qualities of the demon.
तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, देवी संपदा और आसुरी संपदा। तो एक होते हैं भक्तों के गुण और एक होते हैं असुरों के गुण।
So the demons also have good knowledge. You know, like the kingdom of Ravan, Lanka was a very opulent kingdom. It was very economically developed, very prosperous.
तो असुरों को भी ज्ञान होता है, जैसे कि हम देखते हैं रावण, रावण की लंका बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत विकसित थी, संपन्न थे।
And demons also speak philosophy, and this is described in one commentary on Bhagavad Gita. Baladeva Vijayabhusan describes how
one time, a young child died, and he was with the family, and they were in the forest, and somehow the young child had an accident and suddenly died.
और ये जो असुर हैं ये भी दर्शन बोलते हैं जैसे कि भगवद् गीता की एक कमेंट्री में पंडित विद्याभूषण जी बताते हैं कि एक छोटा बालक था वो जंगल में गया और उसके किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो गई.
So the family members were all very much aggrieved with the departure of the young child, but they prepared to perform the funeral of the child, to perform the cremation of the body of the child.
और उस बच्चे के जो परिवार के सदस्य थे वो बहुत ही दुखी हो गए और जो पूरी तैयारी कर रहे थे उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए.
However, before they could do the cremation, at that time a jackal appeared. And the jackal began to speak to the people and tell them that, oh yes, this child was very great, he had wonderful qualities, it is very fitting that you are lamenting for the child, but don't perform the funeral now. Go away and discuss the good qualities of the child and come back tomorrow and you can do the funeral.
तो जैसे ही उस बच्चे के परिवार के सदस्य उसका दाह संस्कार करने जा रहे थे तभी वहाँ पर एक गिद्ध आ गया और गिद्ध ने आके बोलना शुरू किया कि हाँ ये बच्चा तो बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे गुण थे और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको उतना शोक हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से आपको अभी इसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए. आप लोग सब वापिस जाइए इस बच्चे के अच्छे गुणों का गुणगान कीजिए और कल आके इसका संस्कार कीजिए.
The jackal can only eat by night. So he wanted the people not to do the funeral. He wanted them to go away, come back the next day. And then that night, the jackal thought, I can devour the body of this young child.
क्षमा करें, हाँ, जो सियार था, वहाँ की गिद्ध था, तो जो सियार ने सोचा कि ठीक है, अब इसके घर वाले सब चले गए हैं, अब रात को उसका जो मृत शरीर मेरे पास है, और मैं इसका आराम से पान खान इसको खा सकता हूँ.
But right after the jackal spoke, a vulture suddenly flew down from the sky. And the vulture began to speak, oh, don't pay any attention to this foolish jackal. The body and the soul are different. The soul has now left the body of this child. The body is not important. You can just go and leave it. You don't need to do anything. Just go and just understand that the soul of that child has gone, departed now.
तो जैसे ही सियार ने बोला बंद किया तभी वहाँ पर एक गिद्ध आ गया और गिद्ध ने बोला ये सब ये जो मूर्ख है सियार है इसकी बातों में मत आइए. आत्मा और शरीर में बहुत भेद होता है. अब ये जो बच्चा है इसने शरीर छोड़ा है आत्मा इसकी चली गई है तो अब शरीर से कुछ लेना देना नहीं है. आप आराम से जाइए. अब आत्मा इसके शरीर से जा चुकी है.
Because the vulture was thinking, if they will go, then I can eat the body of the child.
क्योंकि जो गिद्ध वो सोच रहा था कि ये इसके परिवार के सदस्य जाएंगे तो मैं इस बच्चे के मृत शरीर को खा सकता हूँ.
So both the vulture and the jackal, they were speaking philosophy, but they were speaking philosophy for their own ends, for their own material gain.
तो दोनों सियार और गिद्ध दोनों ही बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बोल रहे थे लेकिन वो सिद्धांत बोल रहे थे केवल अपने लाभ के लिए.
So here also Shukracharya is speaking philosophy and his motivation is similar, that he's also thinking that we don't want to give our kingdom away to this Vamana Dev.
और यहाँ पे देखते हैं शुक्राचार्य जी भी बहुत बड़े सिद्धांत बोल रहे हैं लेकिन उनका भी वही मानसिकता है. वो अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपने इस राज्य को वामन देव को नहीं देना चाहते.
So he's encouraging Bali Maharaj here. He's speaking about the nature of the body. That he's describing this Mayavadi philosophy. Brahman Satyam Jagat Mitra. That only the Brahman is truth. And what this world is false, this body is also false.
और यहाँ पे शुक्राचार्य जी बलि महाराज को निर्देश दे रहे हैं और बिल्कुल वो मायावाद सिद्धांत बता रहे हैं कि जो जगत है ये मिथ्या है केवल भ्रम सत्य है.
So the fruit from the body, that's also false, it's also not real. Whatever comes from this body, it's also unreal.
तो इस शरीर से जो फल भी प्राप्त होते हैं वो भी वास्तविक नहीं है जो भी शरीर के उत्पाद हैं वो भी वास्तविक नहीं है
We see Lord Chaitanya as a young child. We know that his older brother Vishwarup had left home and gone off to take sannyas. So Jagannath Mishra and Sachimata were very concerned that their other son, the younger son, Lord Nimai, that they thought Maybe if he gets education, he will also follow his older brother.
देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप उन्होंने सन्यास ले लिया था घर छोड़ दिया था तो उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता बहुत दुखी थे और जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि अगर निमाय भी बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करेगा तो ये भी घर छोड़ के चला जाएगा
So they told Nimai that Tomorrow you're not going to school. You don't go to school anymore. But we don't want you to just go to school. When you go to this school, they'll just educate you about the miseries of the life and you may end up becoming a sannyasi. We want you to stay at home with us. So you don't go to school anymore. Your studies are all finished.
तो उन्होंने निमाई को बोला कल से आप स्कूल नहीं जा रहे विद्यालय में नहीं जा रहे क्योंकि आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको जीवन की समस्याओं के बारे में बताएंगे जिसके आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा और आप वापस संन्यास ले लेंगे हम नहीं चाहते कि आप स्कूल जाएं आप यहीं घर में रहें हमारे साथ रहें
So Lord Chaitanya is a young boy what's he going to do if he doesn't go to school so he began to do all kinds of mischief he get some other friends and they would go around and they would go to people's houses and they would dress they put a big sheet over them and they would say oh mad bull is coming, and in this way they go into people's gardens and destroy everything, and they would do all kinds of mischief and nonsense.
तो चैतन्य महाप्रभु अभी तो बालक थे अगर वो विद्यालय में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे तो अपने संगे साथियों के साथ मिलकर उन्होंने खूब शरारतें शुरू कर दी अपने सर के ऊपर वो कोई कंबल डाल लेते थे और लोगों के बगीचों में घुस जाते थे और उनके पूरे जो फल वगैरह इत्यादि होते थे सब उसका नुकसान करते थे
And then one day Mother Sachi, she saw that Nimai was sitting in the place where all the garbage was. And he was sitting with all the broken pots and all the garbage. And she said, what are you doing there? Why are you sitting in all this garbage? Come out of there. What are you doing in there?
So one day Sachi Mata ne dekha ki Nimai bilkul jahan pe sab ki kooda karkat hota hai, toote hue bartan hote hai, wahan pe baithe the. So Sachi Mata ne bola, yahan kahan baithe ho gandgi mein?
Nimai said to his mother, he said, well, you don't let me go to school. I don't know what's good and what's bad. I don't know what I'm supposed to do, what I'm not supposed to do. You don't want me to be educated. How do I know?
तो बोले आप मैं तो विद्यालय तो जानता नहीं तो मुझे क्या मालूम क्या अच्छा है और क्या गंदा है आपने मुझे विद्यालय नहीं भेजते तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है
Then another day, Lord Chaitanya is eating the clay. And Lord Chaitanya, and then his mother said, what are you doing? Why are you eating that clay? And Lord Chaitanya said, well, this clay is the transformation of earth. And every day we cook vegetables, that also comes from the earth. It's all the same, it's all one.
So, एक बार जो निमाई है वो मिट्टी खाने लगे तो सच्ची माता ने बोला कि आप मिट्टी क्यों खा रहे हो तो उन्होंने बोला ये मिट्टी भी पृथ्वी से आई है और जो हम शाक सब्जी खाते हैं वो भी पृथ्वी से आई है तो सब कुछ मिट्टी ही है
Why not eat clay? Lord Chaitanya was speaking also this Mayavadi philosophy that everything is one, there's no difference. So different philosophies, we see so many philosophies out there. Of course, Mother Sachi was what? Oh, my child, what's he talking all this nonsense?
इस जंग से निमाई भी मायावाद सिद्धांत बोल रहे थे और इस तरह से बहुत से दर्शन हैं अलग अलग सिद्धांत हैं लेकिन सच्ची माता ने जब सुना तो उन्हें बोला रे मेरा बच्चा कैसी कैसी बातें कर रहा है
So in the same way, we are also influenced. We hear so many nonsense philosophies. We hear from so many different people. And we do not know what is the actual real truth.
तो इसी ढंग से हम भी बहुत से उल्टे सीधे अलूल जोल के सिद्धांत सुनते हैं और हमें मालूम नहीं कि क्या वास्तविक सत्य है
We don't know. When you turn on your television, you go to your ZTV, and you're hearing all these different people talking philosophy and you think this must be true, it must be like this.
हम भी ऐसे हैं कई बार हम अपना टीवी चलाते हैं कोई चैनल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति है और सिद्धांत बोल रहा है और हम सोचे हाँ ये सिद्धांत बोल रहा है हो सकता है यही सत्य हो
But in the Bhagavad Gita, we see Lord Krishna telling Arjuna, Maya satta mana partam yogam yanjan madashrayam asamshayam samagramam yatajas nasi tachrinu. Now hear from me, O Arjuna, how by practicing yoga and full knowledge of me, you can know me in full, free from doubt.
लेकिन हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आप तो मुझसे सुनो कैसे तुम मुझसे पूर्ण रूप से आसक्त होकर और ये भक्ति योग में लग कर मेरे बारे में पूर्ण रूप से जान सकते हो बिना किसी संदेह के
So Srila Prabhupada comments that this word tachrinu, hear from Krishna. Don't just hear from anyone. This is very significant point. That we have that tendency just to hear from anyone. We don't know who is actually the authority. We should actually be hearing from Krishna and Krishna's representative.
So Srila Prabhupada ji shloka tatpare batate hain ki tachrinu shabd bahut mahatvapurna hai. हमें श्री कृष्ण से सुनना चाहिए हम किसी से भी सुन लेते हैं जो कि अधिकृत नहीं होता बोलने के लिए लेकिन हमें सुनना चाहिए या तो कृष्ण से या कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि से
One time I was doing Govardhan Parikrama and I was talking I met this one man and he said yeah I've come from Jaipur and I said oh you come so far away you've come from Jaipur to do Govardhan Parikrama he said yes I come every Ekadasi I always, every Ekadasi, I will come and now do the Govardhan Parikram. I said, oh, you must be a great devotee of Lord Govardhan.
एक बारी महाराज बता रहे हैं कि वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मैं जयपुर से हूँ तो महाराज ने बोला आप तो जयपुर से इतनी दूर से परिक्रमा करने आए हैं तो उन्होंने बताया हाँ मैं हर एकादशी को परिक्रमा करने आता हूँ तो महाराज ने बताया इसका मतलब आप तो गोवर्धन के बहुत बड़े भक्त होंगे
He said, yes, I'm a great devotee of Lord Govardhan. Not only Govardhan, I worship all the gods.
बोले हाँ, मैं तो गोवर्धन का बहुत बड़ा भक्त हूँ. गोवर्धन का ही नहीं, मैं तो सभी भगवानों को पूजता हूँ.
So then I understood, you know, the man has a, you know, he's a devotee of Krishna, but he's not only Krishna devotee, he's devotee to everyone. Prabhupada said, if you're servant of everyone, then you're not really the servant of Krishna. You want to serve everyone? How can you be everyone's servant?
तो फिर हम समझ गए महाराज बता रहे हैं कि उसने कहा कि मैं तो सभी भगवानों को पूजता हूँ इसका मतलब वो किसी को भी नहीं किसी के भी सेवक नहीं है श्रीला प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर आप सबके ही सेवक बनना चाहते हैं तो आप फिर कृष्ण के सेवक नहीं होते
We cannot be devotee of all the gods. How many gods are there? 33 crores or something? So many gods. You're devotee of all of these gods? My goodness, you're not easy thing to do.
तो हम सभी देवताओं के भक्त हो भी नहीं सकते कितने देवता हैं 33 करोड़ के आसपास तो कैसे हम 33 करोड़ देवताओं के भक्त हो सकते हैं
This is not what Krishna wants. Krishna wants undivided devotion. Vaya vasayatmika buddhi ekeha kurunandana. Those who are on this path are resolute in determination and their aim is one, O beloved child of the Guru. The aim is to please Krishna.
लेकिन कृष्ण हमसे ऐसा नहीं चाहते कृष्ण चाहते हैं बिल्कुल अविभाजित भक्ति व्यवसात्मिका बुद्धि एक करुणंदना कि जो इस पथ पे होते हैं उनकी जो दृढ़ता है बिल्कुल अविचलित होती है
Those who are irresolute, their intelligence is many branched. In other words, if you worship many gods, your intelligence is splayed. You don't have very fixed intelligence.
और जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती, वो बहुत बहुशाखीय बुद्धि हो जाती है और कई सबकी वो पूजा करते हैं.
So Prabhupada makes a point in the purport here. That the test comes at the time of death. Yam yam vapisma rambavam chachiti ankitikalevaram. Whatever you remember at the end of life, that is where you're going to go. Now, are you going to be able to remember 33 crore gods at the time of death?
प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मृत्यु के समय इस बात की परीक्षा होती है जो जिस जिसका हमने जीवन में स्मरण किया है मृत्यु में उसी की ही उसका स्मरण होगा. तो क्या हम मृत्यु के समय 33 करोड़ देवताओं को याद कर पाएंगे?
Therefore Krishna says in the next, he says also in that same section of Bhagavad Gita, antakale chamame vasmaran mukva kale varam, that one who remembers me, then he will come to me. Therefore we want to practice that, remembering Krishna, not remembering everything.
तो इस कृष्णा इसी गीता के इसी अध्याय कहते हैं कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास ही आता है. इसलिए पूरे जीवन में हमें अभ्यास करना है कि कृष्ण का स्मरण करें, किसी और का नहीं.
We don't just chant all the gods' names, we chant the name of Krishna, because Krishna is the root of this whole material creation.
क्यों हम सभी देवताओं के नामों का उच्चारण नहीं करते, हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही इस पूरी सृष्टि के मूल हैं.
So people argue, they say this world is unreal. This, of course, this is a demonic philosophy. That this world is unreal, it is without foundation, it has no purpose other than sense gratification. This is the Asuric Sampa. They are explaining the creation like this.
तो लोग इस तरह से उनपे इसलिए सिद्धांत देते हैं और वो बताते हैं कि जो पूरा संसार है मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल इंद्र तृप्ति ही उद्देश्य है. इस प्रकार से इस सारे के सारे आसुरिक लोगों के सिद्धांत हैं.
But the devotee, we see the world as being real, and we want to make proper use of this world in the service of the proprietor of this creation.
लेकिन जो भक्त हैं, वो इस सृष्टि को वास्तविक रूप से देखते हैं और इसको इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम इसके जो असली मालिक हैं, स्वामी हैं, कृष्ण की सेवा में इसको लगाते हैं.
So Prabhupada talks about this yukta vairagya. This term is given to us by Rupa Goswami. What is actual renunciation?
और तो प्रभुपाद इसमें एक युक्त वैराग्य के शब्द का उपयोग करते हैं. ये शब्द हमें श्री रूप गोस्वामी जी ने दिया और ये बताते हैं कि वास्तव में वैराग्य क्या है.
Renunciation is a topic which is discussed a lot in the Bhagavad Gita. Arjuna wanted to understand how he could be renounced. And Krishna is telling him that your renunciation is to fight, to take part in that battle, to do your duty. That is actual renunciation, to perform your duty without attachment to the result.
तो इस त्याग के विषय में बहुत चर्चा हुई है भगवद गीता में. अर्जुन एक त्यागी बनना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आपके लिए असली त्याग होगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें और युद्ध को लड़ें.
Yeah, there's many different kinds of renunciation. In Vrindavan we see Marka Vairagya, the monkey renunciation.
तो कई तरह के त्याग हैं, वैराग्य हैं, जैसे कि वृंदावन में देखते हैं मरकट वैराग्य जो कि वानरों के द्वारा किया जाता है.
We think, oh, these monkeys are very renounced. They sit in the trees, very cold, you know, they just eat the leaves and fruit of the tree, very austere life, they're very renounced. But they have so many family, they have so many wives, so many, you know, they're not really renounced.
देखते हैं दिखने में जो बंदर होते हैं वो जंगल में रहते हैं, वृक्षों पे रहते हैं, सर्दी हो गर्मी हो और केवल पत्तियां खाते हैं, फूल फल इत्यादि खाते हैं. दिखने में बड़े वो वैरागी लगते हैं लेकिन वास्तव में वैरागी नहीं है. उनकी बहुत सी पत्नियां होती हैं, बहुत सा बड़ा परिवार होता है.
So some people, their renunciation is like the monkey.
कुछ लोगों का जो वैराग्य है वो बंदरों की तरह वैराग्य होता है.
And then there's smasana vairagya. Smasana vairagya is the renunciation of a person at the crematorium.
दूसरा एक शमशान वैराग्य होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति शमशान घाट में जाता है तो उसके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न होता है.
You go to the funeral, you know, somebody in the family passes away, you go for the funeral, everybody's very philosophical, oh, this world is no meaning, there's no purpose in this life. But then 5 minutes later, after the funeral's over, then, oh, let's go to party.
तो हम जैसे किसी की शव यात्रा में जाते हैं, परिवार में किसी का देहांत हो गया, तो सब बड़े फिर बहुत दार्शनिक बातें करते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, इस जीवन का क्या लाभ, लेकिन दाह संस्कार करने के बाद 5 मिनट के बाद सब वापस आते हैं और बोलते चलो पार्टी में चलते हैं.
So that is a smasana vairagya. That is a very short kind of renunciation. Doesn't last very long.
तो इसको समाशना वैराग्य कहते हैं कि ऐसा वैराग्य बहुत एक क्षणिक होता है, कुछ समय तक ही रहता है.
But yukta vairagya is the actual proper renunciation, the renunciation of the Vaishnava. And that renunciation is to utilize this body in the service of Krishna.
लेकिन जो युक्त वैराग्य है वो वास्तविक वैराग्य है, और इस युक्त वैराग्य में है कि इस शरीर का उपयोग हमने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना है.
Now this body is temporary. We may wonder if it's real or not. Definitely it's real. If we were to take a break and hit you on the head of it, you'd know all about it, right? If it's not real, why you worry if I hit you on the head with a brick?
तो ये जो शरीर है हाँ निश्चित रूप से अस्थाई है, लेकिन ये वास्तविक है. अगर वास्तविक ना हो तो अगर हमारे सर पर कोई ईंट मारे तो हम डरते क्यों हैं? अगर ये वास्तविक तो है नहीं, तो ईंट जब लगती है सर पे तो मालूम चलता है कि वास्तविक है कि ये मिथ्या है.
The body is real. We have to take care of it.
तो ये शरीर है, ये वास्तविक है, इसकी हम इसका हमें ध्यान रखना चाहिए.
And we see in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describing the yogis, the lifestyle of the yogi. Don't eat too much. Don't eat too little. Don't sleep too much. Don't sleep too little. Be regulated in eating, sleeping, working, and recreation.
और हम जाते हैं भगवगीता में, देखते हैं कि भगवगीता में भगवान श्री कृष्ण योगियों की जीवन शैली की व्याख्या करते हैं. ना ज्यादा सोएं, ना ज्यादा, ना कम सोएं, ना ज्यादा सोएं, ना कम खाएं, ना ज्यादा खाएं. तो अपने आहार में, अपनी निद्रा में, अपने कार्य में बिल्कुल नियमित रहें.
Yeah. We're seeing every day, sharira avijjao. This material body is a lump of ignorance.
हम प्रतिदिन कहते हैं शरीर अविद्या जात, कि ये जो शरीर है ये बहुत बड़े एक अविद्या का गोला है.
It's a bad bargain. We've got this material body. We're here in this material world. It's a big problem, a big headache for us.
तो हम यहाँ पे संसार में हैं, बौद्धिक जगत में हैं, और ये जो शरीर है ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है.
But we can use this body in the service of Krishna. We can use this body to become purified, to understand the goal of life.
लेकिन इस शरीर का उपयोग हम कर सकते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए. इस शरीर का हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए.
If we didn't have a body, how can we do service for Krishna? If we don't have a tongue, how can we chant? If we don't have ears, how will we ever hear about Krishna? If you don't have your eyes, how will you ever see the form of the Lord?
अगर हमारे पास ये शरीर नहीं होगा तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? अगर हमारे पास जीवा नहीं होगी हम कृष्ण के नाम का उच्चारण कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कान नहीं होंगे तो हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे कैसे? और अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो भगवान के इतने सुंदर दर्शन कैसे करेंगे?
So we have to learn to use these senses in the proper manner for serving Krishna.
तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि अपने इंद्रियों को हम सही तरीके से कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं.
This is the our practice of Krishna consciousness, sadhana bhakti, that we are simply practicing. Just like the child has to practice walking, we have to practice also. Bringing our mind, bringing these senses to the service of Krishna.
तो हमें इसका अभ्यास करना होगा, जैसे कि बच्चा चलने का अभ्यास करता है, हमें अपनी इंद्रियों और मन को कृष्ण की सेवा में लगाने का अभ्यास करना होगा, और इसी को साधना भक्ति कहते हैं.
And by using this material body in the service of Krishna, one day we will be able to give up this body, and we will get our real body, the spiritual body.
इस शरीर को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा के हम इस शरीर से छुटकारा पा सकते हैं और अपना वास्तविक जो शरीर है उसको प्राप्त कर सकते हैं.
Actually, we all have a spiritual body. We are all spiritual by nature, but our spiritual body is covered with this material body.
वास्तव में हम सबके एक आध्यात्मिक देह है, हम हमारी प्रकृति का आध्यात्मिक है, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है वो इस भौतिक शरीर से ढका हुआ है.
This material body is a manifestation of our karma from our past activities, our past lives.
ये जो भौतिक शरीर है ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है.
And when we get rid of this karma, then we'll get rid also of this material body.
जब हम इन कर्मों के फल से छुटकारा पा लेते हैं तो हम इस भौतिक शरीर से भी छुटकारा पा लेंगे.
So our devotional service begins with the tongue. We use the tongue to chant the holy name and to take prasadam. And by simply doing these simple activities, our body becomes gradually spiritualized. It becomes more and more Krishna conscious.
हमारी जो भक्ति की शुरुआत होती है वो जीवा से होती है. जीवा से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं और जीवा के इस उपयोग से धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है.
Others, you know, and other spiritual practices, they're following the process of negation. They want to not see anything. I will not see any beautiful woman. I will not hear any mundane talks. I will not, you know, they want to give everything up, avoid everything. But our process is to just use everything in the service of Krishna.
दूसरे आध्यात्मिक पद्धतियों में वो लोग नकारते हैं कि हम किसी सुंदर स्थिति की अपने नहीं देखेंगे, कोई बात फालतू की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में हम हर किसी का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं.
So, Krishna consciousness is a practical process. It's practical to simply use the senses, not to deny the senses, but to use them in the service of Krishna. Rishikesha Rishikena Sevanam Bhaktir Uchate. This is devotional service. Krishna is Rishikesh. He is the master, the proprietor of the senses. And we're meant to use these senses in his service.
So, Krishna Bhanavid jo padhati hai, ek vyavaharik padhati hai. Isme hum indriyon ko nakarte nahi hai, balki indriyon ka upyog bhagwan Shri Krishna ki sevao mein karte hai. Rishikesha Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Ki jo humari indriyan hai, wo indriyon ke swami bhagwan Shri Rishikesh ki sevao mein lagana hai.
When the senses are used in the service of Maya, they're like poison snakes. Just like the poison snake can bite, put poison into us.
So, जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग माया की सेवा में लगाते हैं, तो ये इंद्रियां विषैले सर्प की तरह होती हैं, जिस प्रकार से सर्प विषैला सर्प हमें डस के हमारे अंदर विष डाल देते हैं.
But when we use the senses in the service of Krishna, it is like cutting out that poison fang from the teeth of that snake.
और लेकिन अगर इन्हीं इंद्रियों को हम भगवान की सेवा कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि उन विषैले सर्प के दांतों से उस विष को निकाल लिया गया.
You often see here in Delhi the snake charmer coming with a basket with a big poison snake in the basket and he's got that he places his pipe and the snake will dance. Right? It's controlled by the sound of that pipe played by the snake charmer.
तो आप देखते हैं दिल्ली में भी कि कई बार वो सपेरा आता है और उसमें छोटी सी टोकरी में एक बहुत बड़ा विषैला सांप रखा होता है और फिर वो सांप के आगे अपनी बीट बजाता है और उस बीट को सुनकर उसकी ध्वनि को सुनकर सांप नाचता है.
In the same way, our senses are controlled by that mantra, by the sound of the Hare Krishna mantra. When we hear the sound of the mantra, then we're reminded, service to Krishna. Chant the name of Krishna. Use our body for Krishna's service.
इसी ढंग से हमारी इंद्रियां भी बिल्कुल नियमित हो जाती हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को सुनकर हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को सुनकर हमें स्मरण होता है कि हमें सारे अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है.
So other people, they're speaking, the world is unreal, but they're very expert in enjoying the world.
तो बाकी लोग सब कहते हैं कि ये संसार वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, लेकिन वो बहुत ही कुशल है अब इस संसार को भोगने के लिए.
They speak their philosophy, but they don't apply their philosophy. They don't practice what they're preaching.
वो सिद्धांत तो बोलते हैं, बड़ा बड़ा दर्शन बोलते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते. जो वो प्रचार करते हैं उस पर वो आचार नहीं करते.
But Krishna conscious philosophy is very nice. That what we are speaking, we can also do using everything for the service of Krishna.
लेकिन कृष्ण वाणामृत का विज्ञान है ये बहुत ही वास्तविक है. जो भी हम बोलते हैं हम उसका पालन भी कर सकते हैं.
Collecting so much money and using it to build big temples for Krishna. Distributing many, many books about Krishna and having big festivals and distributing prasadam, giving everyone Krishna consciousness.
So, हम हर किसी का इस्तेमाल भगवान की सेवा में कर सकते हैं. बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उस धन से बड़े बड़े मंदिर बनाए, बहुत से कृष्ण के विषय में जो साहित्य है उसको बांटा, बहुत से बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन किया और बहुत सारा प्रसाद बांटा.
This is the proper use of wealth. Devotee knows how to use everything properly in the service of the Lord.
ये धन का असली उपयोग है. जो भक्त है वो जानते हैं किस प्रकार से हर चीज का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं.
And it begins with our body, using our body, our mind and senses in the service of Krishna.
और इसकी शुरुआत हमारे शरीर से होती है, अपने शरीर का, अपने मन और सारे इंद्रियों का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करके.
Okay, any questions?
Sir, koi prashna?
Yes.
Hare Krishna, thank you, Maharaj. We see the strange behavior of Shukracharya in this contest. When the Shukracharya is considered very intelligent person, as in the chapter 10th Bhagavad Gita, verse number 37, Lord says, "Kabhi na mushna kabhi." So, how or why is behaving in such a way that is stopping the king body to approach the Lord?
So, Prabhuji ka prashn hai ki is shlok mein hame Shukracharya ka bahut hi vichitra vyavhar dikhai deta hai, kyunki Bhagavad Gita ke 10th adhyay ke 37th shlok mein Bhagavan kehte hain ki sabhi kaviyon mein main Shukracharya hu, to ab wo yahan par Bali Maharaj ko Bhagavan ko daan dene se kyon rok rahe hain?
We can see there's good and bad in everyone.
तो हमें देख सकते हैं कि हर किसी में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं.
Yes, Shukracharya was a very powerful person, very great personality. He's the guru of the demons. He brought Bali Maharaj back from death. Bali Maharaj had been killed, and Shukracharya could bring him back to life. So he was so powerful, he could bring someone back.
देखते हैं कि शुक्राचार्य एक बहुत बड़ी विभूति हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं. उन्होंने बलि महाराज की तो पूरी मृत्यु हो गई थी, उनको वापस वो जीवन में उनको जीवन दिया उन्होंने.
But at the same time, you know, he's the guru of the demons. He's advising them for their sense gratification.
उसी समय में वो क्योंकि असुरों के गुरु हैं, तो वो असुरों को ये परामर्श भी दे रहे हैं कि कैसे इन्हें तृप्ति की जाए.
So he is mentioned in Bhagavad Gita. He's mentioned there in Bhagavad Gita, but Krishna mentions so many things. He mentions Abhisayam the lion. You know, can you say, you know, lion is also saintly?
So Krishna ne Bhagavad Gita mein aise bahut hi vibhutiyon ka varnan kiya hai. Unhe bola jitne bhi pashu hain unme singh hu, to iska matlab jo singh hai wo bhi bahut hi sant ho gaya.
Krishna's pointing out so many prominent things, prominent persons, prominent living entities in the world. And he's saying, I am this, this is his vibhutis. So, although he mentions Shukracharya, he said, men, I am the monarch. We are the monarch, the kings. There are so many kings in the world. Are they all great representatives of Krishna? Krishna says, I am the monarch. But do they live up to that?
वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने उस 10वें अध्याय में विभूतियों की व्याख्या करते हुए बहुत से जो मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं, मुख्य मुख्य बातें उनके बारे में बताया. जैसे कि उन्होंने बताया कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें मैं राजा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी के सभी राजा भगवान के प्रतिनिधि हुए.
So Krishna was just listing so many different prominent features, prominent personalities of this world, so that we can understand how great is Krishna, that they, all of these different vibhutis which are mentioned, they're just a tiny fragment of the Supreme Lord.
तो इस तरह से भगवान ने हमको समझाने के लिए इन सब विभूतियों का वर्णन किया, ताकि हम जान सके कि कृष्ण कितने महान हैं. और भगवान ये बताते हैं कि ये सब की सब विभूतियाँ मेरी असली ऐश्वर्य के एक अंश मात्र भी नहीं. Thank you, Maharaj. You explained about using everything in the service of Krishna, Yukta Vairagya. But to practice Yukta Vairagya, one has to be detached also, because in the name of Yukta Vairagya, sometimes we do our own sense gratification. So how to distinguish that?
Yes.
प्रश्न ये है कि युक्त वैराग्य के बताया महाराज ने, लेकिन युक्त वैराग्य के नाम पे हम हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाते हुए साथ में अपनी भी तृप्ति में लगाते हैं, तो इससे कैसे बचे?
This is the challenge. That we will also, we have this problem, we will speak, this is for Krishna Prabhu, I'm doing this for Krishna. And everybody's, oh, really, you know? everyone else is doubtful, but the person is trying to justify it. He said, no, I'm building this house for Krishna. I've got this new car for Krishna. Really, Prabhu?
तो ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम कहेंगे नहीं नहीं मैं तो सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ मैं इतना अच्छा बड़ा घर बना रहा हूँ सब कृष्ण के लिए है मैंने नई गाड़ी खरीदी है ये भी कृष्ण के लिए है लेकिन सब बाकी सब लोगों को उन पे संदेह है तो बोलेंगे वास्तव में प्रभु आप ठीक कर रहे
हैं I have to be very very careful very cautious devotional service is a fine line or we say it's like going along the edge of the razor one slip with the razor if you a little you know if we're not careful with using the razor easily cut and then when you cut then it's difficult to stop bleeding so devotional service is like that it's a very fine edge and we must be very careful how we cultivate this vairagya
isliye hame bhakti mein bahut bahut sadhan hona chahiye भक्ति जो है तलवार की धार पे चलने के समान है तो जैसे रेजर की धार पे चलने के समान अगर रेजर चलाते हुए थोड़ी सी भी असावधानी हो गई तो कट आएगा और उसमें से खून बहना शुरू हो जाएगा इसलिए हमें बहुत सावधानी से हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा में करना
सो रूप गोस्वामी हैज गिवन अस अ प्रिंसिपल बट टू हाउ वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल इट इज अ ग्रेट चैलेंज ऑन अस to do it in the correct manner to actually satisfy that our motivation is to please Krishna and not just to satisfy our senses
to Rupa Goswami ji ne to hame siddhant diya hai aur lekin hame ise siddhant ka upyog bilkul sahi dhang se karna chahiye aur hame apne jo hamara hamara kya abhipray hai iske prati bahut savdhan rehna chahiye क्या मैं वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या अपनी प्रसन्नता के लिए?
We know Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada had been donated the big building in the Bara Bazaar in Calcutta, but then when he got the big building, then he heard his disciples arguing, "This won't be my room. This room will be my office. This room will be for me." And then he understood. He said that better we sell this building and just print books.
जानते हैं ऐसे भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर महाराज जी को किसी ने बाग बाजार में बहुत बड़ी बिल्डिंग दे दी दान में लेकिन उसके बाद क्या हुआ उनके शिष्यों में आपस में लड़ाई होने शुरू हो गई कोई कहने लगा कि ये कमरा मेरा होगा ये मेरा ऑफिस होगा तो सब तब भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर महाराज ने समझा कि इस बिल्डिंग को बेच कर अच्छा यही होगा कि इसको बेच कर मैं पुस्तकें छापू और उसको वितरण करूँ
He said there will be fire in this building because the motivation was not right. The people were thinking about their own comfort, their own needs. They were not thinking about service to Krishna.
तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज ने बताया कि इस बिल्डिंग में आग लग जाएगी क्योंकि जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं उनकी जो मोटिवेशन है वो ठीक नहीं है वो कृष्ण की सेवा के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोच रहे हैं
So we have to also be constantly checking ourselves. We must be very careful to utilize everything for the service of Krishna, to satisfy Krishna, and to give up our own needs, minimizing our own demands.
इसलिए हमको भी बहुत ही हमेशा सावधान रहना चाहिए और बार-बार हमें अपने जो हमारा अभिप्राय है, हमारे जो motivation है, उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए.
Krishna can give the whole world, but we have to be qualified to use it properly.
तो हमें साथ-साथ अपनी जरूरतों को बहुत कम कर देना चाहिए और कृष्ण जो है हमें पूरा विश्व दे सकते हैं लेकिन हमारे पास वो ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकें।
We see battle of Kurukshetra, 18 days, and the Pandavas got the whole world. They had nothing. Before the battle and after the battle, they were ruling the whole world. So, 18 days, it can just take 18 days if you're surrendered to Krishna.
हम देख सकते हैं कि पांडवों ने युद्ध लड़ा केवल 18 दिन के लिए और 18 दिन के बाद पूरा विश्व उनके पास था पूरे विश्व का राज्य तो इसी ढंग से अगर हम 18 दिन भी भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं तो पूरा विश्व हमारा हो सकता है
Of course, but are we qualified to use the whole world in the service of
Krishna?
Now, Sudama went to Dwarka, and when he came back from Dwarka, then he found his little home had been transformed into a palace, and so much opulence was there. So how did he accept all of this opulence?
तो हम देखते हैं कि सुदामा द्वारका में गए और द्वारका से जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी कुटिया थी वो बहुत बड़ा महल बन गया तो वापस आने के बाद कैसे उन्होंने सारे सारे ऐश्वर्य को स्वीकार किया
He accepted all of it in the mood of renunciation. He did not think it's for my enjoyment, but he understood it was all given by Krishna and that it was meant for service to Krishna.
तो उन्होंने सुदामा ने जो उसको स्वीकार किया अपने भोग की भावना से नहीं बिल्कुल बिल्कुल वैराग्य की भावना से क्योंकि वो जानते थे सब कुछ केवल कृष्ण के द्वारा दिया गया है
So we build big temples, we have big centers. They're our base for our armies to go out and fight Maya. They're not just places for our eating and sleeping, but they're a base for the army to go out and fight Maya.
तो हम बहुत बड़े मंदिर बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं केंद्र हैं लेकिन ये सारे के सारे जो केंद्र हैं बड़े मंदिर हैं ये एक बेस हैं ताकि हम यहाँ से निकले बाहर जाए और माया के प्रति युद्ध लड़े
ताकि
हम इस बड़े बड़े मंदिरों में रहकर केवल खाएं और सोएं
We don't need big houses, we don't need big, big temples, but to attract the people to come, we have the big temples.
हमें बड़े बड़े घरों की और बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं है लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें बड़े मंदिर बनाने पड़ते हैं
Right? If we have a temple under a tree, none of you would come.
अगर हमारा मंदिर एक पेड़ के नीचे होता तो आप में से कोई भी ना आते
But we build a big temple, then we can attract lots of people. And then we can inspire them in proper renunciation.
तो हम बड़े मंदिर बनाते हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें और फिर मंदिर में मुलाकात को असली वैराग्य के बारे में समझा सकें
Yes, Prabhu.
Maharaj, in this past time I have one doubt that in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, Chaitanya Mahaprabhu was the Channa avatar. He was the hidden incarnation. But he wasn't able to hide himself from his devotees. They understood that he is Lord Krishna. Similarly here, Vamandeva was recognized only by Shukracharya. Nobody else could understand it. How?
Well,
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इस लीला में मुझे एक संदेह आ रहा है कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु एक छन्न अवतार है हालांकि उन्होंने अपने को छुपा के रखने का प्रयास किया लेकिन अपने भक्तों के सामने अपने आप को नहीं छुपा पाए और यहाँ बलि वामनदेव जी आए और वामनदेव भी अपने आप को छुपा रहे हैं लेकिन उनको एक असुर ने शुक्राचार्य ने पहचान लिया किसी और ने नहीं पहचाना तो उसको कैसे समझे
Well, after Lord Vamanadev took the three steps of land, then everyone recognized him. He was not hidden anymore. He revealed himself as the Supreme Lord.
तो महाराज बता रहे हैं जैसे जब भी वामनदेव ने जब वो तीन कदम उठाए तो हर कोई पहचान गया कि वास्तव में भगवान है
Initially, There was some suspicion. Shukracharya could understand. Bali Maharaj was considering, maybe, maybe not. You know? But once he took the three steps of land, then everyone knew his identity.
So, शुरुआत में शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये विष्णु हैं, लेकिन बलि महाराज जी को संदेह था कि ये विष्णु हैं कि नहीं. लेकिन जब एक बार उन्होंने तीन कदम लिए, तो हर किसी को ज्ञात हो गया कि ये स्वयं भगवान हैं.
So he didn't remain hidden for long.
तो वो ज़्यादा देर तक वो अपने आप को छुपा नहीं सके.
Okay. Yes, Prabhu, you have a question.
Thank you, Maharaji. Maharaji, एक कल क्लास लिया था मैंने शाम को. और उसमें वैसे चाइनीज के प्रति हमारा कंस में ये विचार हमारे विचार होते हैं कि शत्रु है लेकिन जब देखा मैंने बैठे हुए यहाँ भक्तों को तो लगा कि एक भक्त कैसे सोचता है विश्व के बारे में. इतने डिवोटीज को मैंने देखा, वो भी लेडीज डिवोटीज ज्यादा थी, माता जी ज्यादा थी उसमें. तो ये तो आपके प्रति एक मेरा मतलब एक सद्भाव रहा कि मतलब कैसे जोड़ा आपने शत्रु कंट्री को. लेकिन महाराज जी आपने ये कहा कि 33 करोड़ देवताओं को पूजा करना मुश्किल काम है. हम घर में हनुमान जी को भी रखे हुए हैं और सबको रखते हुए अगर पूजा करते हैं तो हनुमान जी को भी अभी मंत्र हनुमान जी के नाम से नहीं करते हैं, कृष्ण के ही नाम से हनुमान के भीतर देखते हैं. लेकिन हमारे मंदिरों में भी इतने विग्रह स्थापित होते हैं तो इन विग्रह के ऊपर जाता है तो कृष्ण नहीं वहां बलराम नाम दिमाग में आता है कि हम बलराम की ओर देख रहे हैं या जगन्नाथ जी की ओर देख रहे हैं. तो क्यों नहीं केवल कृष्ण को ही स्थापित किया जाए कि हर जगह देखे तो हम कृष्ण की इच्छा भी हमें दिखाई पाए. थैंक यू महाराज जी.
His question was, Maharaj, that yesterday I attended your lecture and I saw so many Chinese devotees. Initially, I used to consider China as an enemy country. But when I saw all those devotees, I could understand how a devotee sees everything related to Krishna. And especially I saw in the Chinese devotee, a lot of ladies were there, Matajis were there. So that has created a very good feeling in my heart for you. But in today's lecture, you said that we should not worship the demigods. In my home, I have a picture of the deity of Lord Hanuman also. But I chant, when I see Hanuman ji, I don't chant Hanuman's mantra. I chant Krishna's mantra and see Krishna in Hanuman. Similarly, in our temple also, an altar, so many deities are there. There's Balram ji is also there, Jagannath ji is also there. So, when we are only worshipper of Krishna, why not to install only Krishna in the altar so that wherever we see, only Krishna is there.
Well, you have that free will. It's up to you. If you want to do that, there's no harm.
Yeah.
Somebody's. You just want to worship Krishna. You don't want to worship Balaram. Okay. You can worship Krishna.
तो महाराज कह रहे हैं आपकी स्वेच्छा है. अगर आप केवल कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो केवल कृष्ण की पूजा करिए. आप बलराम जी को नहीं पूजना चाहते तो मत पूजिए.
But usually Krishna is never alone. You see, you have to understand one of the qualities of Krishna is he's never alone. The king comes, king doesn't come on his own. You know, he comes with all his other friends. Big, you know, the prime minister comes, he doesn't come on his own. He'll bring his friends with him. So when Krishna, you put Krishna there, Krishna also likes to have his friends with him. His brother and sister are there. As Balaram and Subhadra, or he's with Radharani. Yeah, why he should be alone? Oh, he's a lonely person. No, he's on his own. You think God is lonely? No, he likes company. He's very social. Krishna is the most social. He goes out dancing every night.
आप रख सकते हैं, आप अकेले कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, बट साधारणतः कृष्ण कभी अकेले होते नहीं. यहाँ इस दुनिया में कोई राजा भी आता है तो राजा अपने सेवकों के साथ आते हैं, संगियों के साथ आते हैं. और कृष्ण जो है अकेले रहना पसंद नहीं करते. कृष्ण बहुत ही सोशल व्यक्ति हैं, उनको मिलना जुलना अच्छा लगता है. और अपने भाई के साथ हैं, अपनी बहन और सुभद्रा और भाई के साथ हैं, राधा रानी के साथ हैं. हर रात वो कृष्ण चले जाते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं. तो कृष्ण को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता. कृष्ण हमेशा लोगों से मिलते जुलते हैं.
So he's with his devotees, Hanuman is his devotee, Garuda is here, he's his devotee, Tosi is here also, she's his devotee. You know, we put all the those who are devotees, they're here with Krishna.
So we see that Hanuman ji is Krishna's devotee, Garuda ji is Krishna's devotee, Tosi is Krishna's devotee. So we keep the altar on the altar, we keep the devotees, we keep the
But sometimes, people get a bit confused and, you know, they think it's all one. You know, that if we put all the gods, they think it's all one. Everyone's the same. This is the problem.
Like, many people get confused and they think that all the gods are one, so they keep everyone together. But this is the problem.
Yeah, is Shiva also God? Is Durga also God? Is Ganesh also God? They're all the one, they're all the supreme, they're all one. Ultimately, if everybody's God, then there's no meaning to God anymore.
तो शिव भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, तो अगर सभी के सब परम है, सभी के सभी भगवान है, तो फिर भगवान का मतलब क्या हो?
So Prabhupada wanted to make it very clear to everyone who is actually God. That's why we didn't just say International Society for God Consciousness, but we said it's the Society for Krishna Consciousness. He said, give God his name.
और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि भगवान कौन है. इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय भगवान भावित नहीं रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना ने संस्था रखा. तब प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कौन नाम दे.
So we chant the name. You can chant many names of God, but what we chant, we particularly chant Hare Krishna. Why? Because we're following Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu taught everyone to chant this Hare Krishna mantra.
So Bhagwan ke kai naam hai, Bhagwan ne kisi bhi naam ka jap kar sakte hai, lekin hum log Bhagwan ke Krishna naam ka kirtan karte hai, kyunki ye hame Chaitanya Mahaprabhu ne sikhaya hai.
Nowadays you've got many people that are doing kirtan and they're chanting names about many different gods. But we're chanting the name of the Supreme God.
आजकल बहुत से लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन करते समय और बहुत से अलग अलग भगवानों के नाम का कीर्तन करते हैं, लेकिन हम लोग केवल कृष्ण के नाम का ही कीर्तन करते हैं.
In a previous life, Narada Muni got cursed because he chanted the names of the demigods in kirtan.
अपने पिछले जीवन में नारद मुनि जी को श्राप मिल गया था क्योंकि नारद मुनि जी अपने कीर्तन में देवताओं के नाम का कीर्तन कर रहे थे.
Okay.
Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. He's over there. Thank you, Maharaj. We are extremely grateful to Maharaj. This was Maharaj's first visit to Madayavak Temple. Every year we get the association of Maharaj in Mayapur in Navdeep Mandal Parikrama. So I will sincerely request Maharaj that whenever he comes to India, please don't forget us. Please come to Panjai Bagh and give his wonderful association. Maharaj has been preaching in many countries of Asia like Singapore, Hong Kong, China, Philippines. Now he started preaching in Russia also. And Maharaj is known for his strict sadhana and simple behavior and wonderful straightforward lectures. And he has been teaching in MI Institute also. And in Navdeep Parikrama we see Maharaj lives a very, very simple lifestyle and inspires all the devotees from all over the world with his kirtans and with his lectures. So we are extremely thankful to His Holiness Bhakti Vikmanashar Narasingh Maharaj. His Holiness Bhakti Vikmanashar Narasingh Maharaj ki Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai Gaur Premanande. And we are also extremely thankful to Agnidev Prabhu. This Panjai Bagh Yatra has been blessed by the presence of two Srila Prabhupada's disciples. Today morning, Mangal Aarti and Guru Puja was led by Agnidev Prabhu. We could never imagine to have the presence of Agnidev Prabhu in this Aarti. So we are extremely thankful to Prabhuji also. Thank you so much.